मंगलम भगवान हीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंडलकुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सौवसितु दुर्मचलमणोवमंगलिपते ओत्सामि समय बाहुरे नमोऽस्तु केवलीवणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्सवाय भावाय सर्वभावान्तरचिते निःसङ्गहे जो आयु सम निरलेप है आकाश से निज आत्मा में विहरते जीवन न पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरुओं की कैसी अलौकिक शूरता। 144 गाथा गाथा पाठ सम्मत दंशन नानम ए सोलह दैत्यनवरी भवदेशम सवनय पक्कर हितो मणिदो जो सो समय सम्यक्त और सुज्ञान की एक को सम्या मिले नय पाच सकल विहीन भाषित वो समय का सार। गाथा का अर्थ इतना सा था कि त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा जब अनुभव में आता है उस काल में जीव सर्व नय पक्ष रहित होता है। उसे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ये दो नाम प्राप्त होते हैं और वह जो समय सार है वो पक्षातिक्रांत है। पक्षातिक्रांत का अर्थ क्या है? शब्दार्थ तो ये है कि जो पक्ष से अतिक्रांत है वो पक्षातिक्रांत है। ये तो शब्दार्थ है। भाव क्या है कि जिसकी परिणति को चैतन्य के अलावा अन्य कोई छूता नहीं है, जिसकी परिणति को शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा के अलावा अन्य कोई छूता नहीं है, वह पक्षातिक्रांत है। दूसरी भाषा में कि जिसके विचार में से और विचार निकल गए, आत्म संबंधी भी विचार निकल गए, केवल आत्म तत्व रह गया। क्या? कि अन्य सब विचार निकल गए, विषय भोगों के विचार की तो बात छोड़ो, चैतन्य संबंधी विकल्प भी जिसमें से निकल गए और जिसके लिए केवल एक चैतन्य चैतन्य आत्म तत्व ही रह गया वो पक्षातिक्रांत है। पक्षातिक्रांत कौन? कि जिसको आत्मा के अलावा अन्य अपनी परिणति में कुछ भी भासित नहीं होता वो जीव पक्षातिक्रांत है। पक्षातिक्रांत कहो, आत्मानुभवी कहो, मोक्ष मार्ग में चलने वाला कहो, सबका अर्थ एक ही है। या दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि जो जीव मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर था, जिसने पहला कदम मोक्ष मार्ग में रखा वो पक्षातिक्रांत है, और जिसने अभी कदम नहीं रखा वो जीव इस ओर तो आया लेकिन अभी मोक्ष मार्ग में उसका कदम नहीं पड़ा है। अब यहाँ टीका में, संस्कृत टीका है, इसमें क्या करना चाहिए? तो पहली पंक्ति, पहली दो पंक्तियां सामान्य रूप से कि अयम एकः एव केवलम सम्यक दर्शन ज्ञान व्यपदेशम किल लभते। अयम मतलब पक्षातिक्रांत, कि जो पक्षातिक्रांत हो चुका है, होने वाला है वो नहीं, क्या है? अयम यह कौन? कि जो पक्षातिक्रांत हो चुका है वह, होने वाला है वो नहीं, होगा वो भी नहीं है। बात समझे? पक्षातिक्रांत सन्मुख जीव की भी बात नहीं, और प्रक्षातिक्रांत भविष्य में होगा उसकी भी बात नहीं। जो पक्षातिक्रांत हो चुका है उस जीव को अयम, मतलब उस जीव को एव, मतलब ही, केवलम मात्र नाम प्राप्त होते हैं। कौन से? कि सम्यक दर्शनम सम्यक ज्ञानम व्यपदेशम। व्यपदेश मतलब ऐसे नाम प्राप्त होते हैं। बात समझ में आ गई? जीव की मानकशा इतनी तीव्र रहती है कि सम्यक दर्शन से भी ऊंची। अंतरंग में सम्यक दर्शन है क्या नहीं पता नहीं, लेकिन लोग मुझे सम्यक दृष्टि समझे, तो कषाय बड़ी हुई, सम्यक दर्शन बड़ा हो गया। यहां उसकी लोकेशना की बात नहीं, लोकेशना वाला जीव लोकाग्र में विराजमान नहीं होता। अर्थ समझ में आ गया? जिसको लोकेशना की इच्छा है वो जीव लोकाग्र में स्थित नहीं होता। जंगल में बहुत सारे सुगंधित फूल होते हैं जिनको कोई नहीं देखता फिर भी सुगंधित होते हैं। कोई देखे नहीं देखे अपना काम सज जाना चाहिए। अनंतानंत मुनि ऐसे हुए जो मोक्ष गए जिनका नाम कोई नहीं जानता। आज दो चार व्यक्ति जाने, इसलिए उपयोग को बाहर भ्रमाए, ये कोई मार्ग नहीं। अयम अर्थात पक्षातिक्रांत जो जीव है उसकी जो परिणति है चैतन्य के साथ अभेद परिणति, ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस परिणति में शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा की स्थापना होने से अन्य सभी विकल्पों का अभाव हो गया। बात समझ में आ गई? कि जिस परिणति में शुद्ध चैतन्य की स्थापना नहीं होने से विकल्पों का जंजाल था, जाल था, क्या थे सब विकल्प थे? कब तक थे? कि जब तक परिणति में चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा की स्थापना नहीं हुई थी तब तक विकल्प थे। विकल्प भी दो प्रकार के, विकल्प और विचार में क्या अंतर है? रजनी भाई, कल प्रश्न था, शाम को लेना हो तो शाम को, नहीं तो अभी, नहीं तो रिपीट हो जाएगा, कोई बात नहीं। जिसका विरोधी विद्यमान है उसको तो कहते विकल्प, कि मैं शुद्ध हूं अशुद्ध हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ, मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। इनके विरोधी विद्यमान है वो तो विकल्प है, और विरोधी विद्यमान होने पर विचार करने की जरूरत पड़ती है। दो शत्रु सामने खड़े हो तो पहले किसको मिटाऊं, तो उसके लिए क्या युक्ति, क्या तर्क, क्या उपाय करूं कि जिससे ये पराजित हो जाए, तो उसमें से सबल कौन सा, निर्बल कौन सा, कि मैं शुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, मैं बंधा हुआ हूं। ऐसे जो परस्पर विरोधी विचार है वो तो विकल्प है, जिसके साथ प्रतिपक्षी विद्यमान है। यहां इस भाषण, यहां इस गाथा में जहां जहां जे जे योग्य छे उस अपेक्षा से यहां विकल्प का अर्थ ये कि दोनों परस्पर विरोधी, तो वो तो हो गया विकल्प। उस विकल्प के आधार पर जो विचार चलते हैं, तर्कना चलती है, उसमें से सबल कौन सा, निर्बल कौन सा, किस हेतु से किसकी परीक्षा की जाए, परीक्षा करने के बाद फल क्या आ जाए, ये सब विचार की श्रेणी में चले जाते हैं। बात समझ में आ गई, कौन सा विचार करना चाहिए वो भी इस गाथा की टीका में बताया कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ये दो नाम प्राप्त होते, व्यपदेशम व्यपदेशम नाम प्राप्त होते हैं, कहे जाते हैं उनको, उसी को जो पक्षातिक्रांत है उसी को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ये दो नाम प्राप्त होते हैं। जो पक्षातिक्रांत नहीं है उसको ये दो नाम भी प्राप्त नहीं होते हैं। लभते मतलब प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, उनका नामकरण किया जाता है। अब आगे, यह खलु अखिल नय पक्ष अक्षुण्णतया, क्या लिखा है, यह जो, अब यहां से अंतिम शब्द तक एक वाक्य है, पूरी टीका तीन वाक्य में। पहला वाक्य तो ये था, अयम एक एव केवलम सम्यक दर्शन ज्ञान व्यपदेशम किल लभते, एक वाक्य ये है। ये दूसरा वाक्य अपन पढ़ रहे हैं, यह खलु अखिल नये पक्ष अक्षुण्णतया विश्रांत समस्त विकल्प व्यापार स समय सार, ये दूसरा वाक्य। और तीसरा वाक्य यत से लेकर के समय सार एव अंत, तीन वाक्य। अब तीन वाक्य समझ में आ जाए तो टीका समझ में आ जाए, और तीन वाक्य हृदय में समा जाए तो पक्षातिक्रांत हो जाए। बात समझ में आ जाए, शब्दार्थ तो अनंत बार समझ लिया, बात तो समाने की है, समझ तो अनंत बार लिया, लेकिन जो समझा उसमें समा नहीं गया। बात समझ में आती। और एक जैन नीति में ये भी कहा जाता है कि प्रवचन में बैठना पुण्य के उदय से होता है, प्रवचन को बिठाना पुरुषार्थ से होता है। प्रवचन में बैठना पुण्य के उदय से होता है, और प्रवचन को अपने में बिठाना ये पुरुषार्थ से होता है। इसमें तीन वाक्य मात्र है। देखो, पहले वाक्य में ये कहा कि पक्षातिक्रांत को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ये दो नाम मिलते हैं, समझ में आ गया। अब दूसरा, उसी को क्यों मिलते हैं और पक्षातिक्रांत होने के लिए क्या करना चाहिए, विधि तीसरे पंक्ति में, तीसरे वाक्य में, कि दूसरे वाक्य में ये कहते हैं यह खलु, खलु का अर्थ वास्तव में खरे खर निश्चय से यथार्थ में। अब ये तो सब शब्दों की, समझाने की शब्दों के द्वारा शैलियां हैं, वस्तु को शब्दों की आवश्यकता नहीं, वस्तु को अनुभूति की भी आवश्यकता नहीं। ये बात समझ, शब्दों की तो आवश्यकता है नहीं, लेकिन उस वस्तु की चर्चा इसमें है जिसके आश्रय से पक्षातिक्रांत होता है, उसके लिए अनुभूति की भी आवश्यकता नहीं है। फिर भी शब्द लिखा है खरू, खरू मतलब खरे खर। वास्तव में अखिल न, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, व्यवहार हो चाहे निश्चय हो, सभी प्रकार के नय से, नयों के पक्ष से। पक्ष का मतलब क्या है कि विकल्प के एकत्व को ही पक्ष कहते हैं, विकल्प को पक्ष नहीं कहते। क्या कहा? विकल्प प्लस एकत्व बराबर पक्ष, विकल्प प्लस एकत्व इक्वल टू पक्ष। विकल्प को पक्ष नहीं कहते। विकल्प में ठहर जाना, विकल्प में एकत्व स्थापित करना, विकल्प जैसा मानना, विकल्प जितना मानना, ये पक्ष है। बात समझ में आ गई? विकल्प जितना मानना, विकल्प जैसा मानना, विकल्प में एकत्व स्थापित करना, ये पक्ष है। क्या है? ये पक्ष है। दूसरा अर्थ ऐसा भी है कि जिसमें भंग पड़े वो पक्ष, जिसमें भंग पड़े उसको पक्ष कहते हैं। कि मैं साध्य और मैं ही साधक, इसमें यदि भंग पड़ता है तो ये भी पक्ष है। और जहां साध्य और साध्य का विकल्प नहीं रहता, साध्य और साध्य तो होते हैं लेकिन साध्य और साध्य साधक का भेद नहीं होता है, वो निर्विकल्प दशा पक्षातीत है। यह खलु अखिल नय, सभी नए पक्षों से अक्षुण्ण है। कि मैं बंधा हुआ हूं, कि मैं मुक्त हूं, कि चाहे जैसा नए का पक्ष हो। इसमें ये भी समझ लेना कि शुद्ध नए के पक्ष में भी शुद्धात्मानुभूति नहीं रहती। शुद्ध नए के पक्ष में भी शुद्धात्मानुभूति नहीं रहती। क्या लिखा है? कि अक्षुण्णतया, कि जो नए पक्षों के काल में भी किसी ने अशुद्ध मान लिया है, उस काल में भी जिसकी शुद्धि में कोई अंतर नहीं आया है। बात समझ में आ गई? कि चाहे जैसा मान लिया, जिसको शरीर रूप मान लिया, अशुद्ध मान लिया, पर्याय वाला मान लिया, राग वाला मान लिया, चाहे जिस नए का आश्रय लेकर के उसने अपना प्रपंच खड़ा किया हो, लेकिन जिसके स्वरूप में कुछ भी कमी नहीं आई। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु भी नाही। ये अक्षुण्णता का अर्थ कि अंतर में कुछ भी भेद नहीं है, कि जिसमें किसी भी प्रकार का खंड नहीं हुआ। एक प्रश्न ये कर सकते हैं कि पक्ष कब तक रहेगा? नहीं, ये बात समझना है। ये पक्षाति क्रांत की बात चल रही है तो हमें पक्ष की बात नहीं सुननी है, पक्षाति क्रांत की व्याख्या भी नहीं सुननी है। पक्षाति क्रांत कैसे हो, होना स्वयं को, होना स्वयं को है। इसलिए जो कुछ, चाहे लक्ष्य बदलना है, चाहे पुरुषार्थ करना है, या लक्ष्य बदलने को ही पुरुषार्थ कहते हैं, ये है, जो भी है करना अपने को है, कोई और नहीं करा देगा। चाहे तीर्थंकर हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी वक्ता सामने हो, तीर्थंकर हो, स्वामी जी हो, करना तो और नहीं करा देगा। बात समझ में आ गई? अपने स्वयं विकल्पों में जीव स्वयं ही है, और निर्विकल्प होगा तो स्वयं ही होगा। पक्ष में स्वयं है तो पक्षाति क्रांत भी स्वयं ही होगा, कोई और नहीं कराएगा। कि पक्षातिक्रांत कैसे हो और हम पक्ष में कब तक, बहुत प्रयोजनभूत बात इतनी से है कि पक्षातिक्रांत कब होगा, ये जी कब तक पक्ष रहेगा। तो सीधा सा सरल सा जवाब है, बैंसरी की भाषा में कहे तो जितना कारण देना चाहिए उतना कारण नहीं दिया, इसलिए कार्य सामने नहीं आया। समझ में आ गई बात कि जितना जोर देना चाहिए था उतना जोर नहीं दिया, जितनी व्यवहार की गौणता करनी चाहिए थी, शुद्ध चैतन्य को ऊर्ध्व रखना चाहिए था, ऊर्ध्व नहीं रख पाया, इसलिए आज भी भले ही सुनने के लिए बैठा है लेकिन पक्ष में ही बैठा है। राजनीति में तो पक्ष विपक्ष बहुत है, कोई देर नहीं लगे अपना काम करने के लिए, पुण्य के उदय की भी आवश्यकता नहीं। पर एक प्रश्न ये भी, एक साहब ये काम करेंगे तो क्या फायदा, ये काम करेंगे तो फायदा ये है कि चाहे जैसी प्रतिकूलता हो तो दुखी नहीं होगा, और चाहे जैसी अनुकूलता हो तेरे भीतर मान कषाय उत्पन्न नहीं होगी, इसलिए पक्षातिक्रांत होना जरूरी है, होना चाहिए। सुख का मार्ग तो सभी को अपनाना चाहिए, पक्षातिक्रांत का मार्ग, इस मार्ग पर सभी को चलना चाहिए। तो कैसे चले, कैसे पक्ष छूटे, कि भैया पकड़ा तूने है छोड़ना तेरे ऊपर है, कि जब तक शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा की महिमा अंदर से न आए, उपदेशों से पक्षातिक्रांत नहीं हुआ जाता। यह खलु अकल अखिल नए पक्ष, समझ में आ गई बात कि जो सभी नए पक्षों से अक्षुण्ण है, कैसा है, अखंडित है, वस्तु खंडित हो तो जभी जाग जाओ तभी है सवेरा, ऐसे कैसे होगा। हे जीव, तुझे कहीं और न गमता हो, अच्छा लगता हो तो भीतर चले जा। समझ में आ गया सबको वाक्य किसका है। हे जीव, तुझे बाहर कहीं अच्छा न लगता हो, बाहर प्रतिकूलता दिखती हो, दुख दिखता हो, तो अपने स्वरूप में चला जा, वहां तुझे अवश्य गमेगा। और एक वाक्य लिख के भी रखना, हमेशा परिणामों में रखना, बाहर सुख नहीं भीतर दुख नहीं, बाहर सुख नहीं है और भीतर दुख नहीं है, इसलिए भीतर रहने वाला जीव कभी दुखी नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, क्योंकि भीतर दुख नहीं है, और बाहर भटकने वाले को कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि बाहर सुख ही नहीं है। तो क्या होता है कि सभी नए पक्षों से अक्षुण्ण रहने के कारण से जब भी यह जीव पक्षातिक्रांत होना चाहता है हो सकता है, लेकिन कब होता है कि अपने त्रिकाली चैतन्य स्वरूप को देखने पर क्या होता है, आगे लिखा है, देखो, विश्रांत समस्त विकल्प व्यापार। ये शब्द कल पढ़ा था अपन ने कि विश्रांत रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, ये फाटक पर गेट बंद होता है ना, इधर के वाहन रुक जाते हैं, उधर के वाहन, एक तो उदाहरण एक देश से नीचे से भी घुस जाते हैं लेकिन विश्रांत रुक जाते हैं, कौन रुक जाते हैं और कितने रुक जाते हैं, तो पहले कितने का जवाब दिया, समस्त, एक भी बाकी नहीं रहता, एक भी विकल्प शेष नहीं रहता, सभी जो भी विकल्प है उन विकल्प सारे के सारे विकल्प रुक जाते हैं। न केवल ध्यान से देखो, न केवल विकल्प रुकते हैं बल्कि विकल्पों का जो व्यापार है धंधा वो बंद हो जाता है, है? न केवल वो दुकानदार ठहरता है बल्कि उसकी दुकान भी ठहर जाती है, न केवल विकल्प बल्कि विकल्पों के सभी व्यापार ठहर जाते हैं। तो ये डेफिनेशन सामने आ गई कि समय सार किसे कहते हैं, कि जो किसी भी प्रकार के नए के पक्ष से खंडित नहीं होता कौमा, तथा जिसको देखने पर सभी प्रकार के विकल्पों के व्यापार अस्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उसे समयसार कहते हैं। और उस समयसार को प्राप्त होने की दशा को पक्षातिक्रांत दशा कहते हैं। तीसरी पंक्ति में विधि बताई, क्या विधि है उसको अब प्रारंभ करते हैं। यतः क्योंकि, क्या लिखा है, यतः क्योंकि प्रथमतः जो पक्षातिक्रांत हुआ उसकी चर्चा है कि पक्षातिक्रांत होने से पहले उसने क्या किया। कि प्रथमतः, देखो हिंदी या गुजराती अनुवाद में तो प्रथम शब्द है और मूल संस्कृत में प्रथमतः है। संस्कृत से क्यों पढ़ते कि मूल में प्रथम शब्द है और मूल में प्रथमतः है, अनुवाद में आ गया प्रथम। बात समझ में आ गई, एक तो ये अंतर है। अब मुझे ये लगा कि आचार्य भी तो प्रथम शब्द लिख सकते थे, एक एक शब्द की संस्कृत में कीमत मानी गई है और यहाँ तक लिखा है कि अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणा, एक सिद्धांत है कि एक मात्रा भी कम हो जाए तो वैयाकरण तो उत्साह मनाते, उत्सव मनाते हैं। इसकी व्याख्या में स्वामी जी ने भी ऐसे ही प्रसंग कि जिसको समय दर्शन होता है वो तो उछलता होगा बाहर में, तो स्वामी जी ने कहा कि ये कोई संसार के उत्साह की बात नहीं कि जो उछले, एक बात, और संसार के उछलने में तो राग है और राग तो अशुद्धता है, है? किसी ने प्रश्न किया इसके उसमें पुराने प्रवचन में कि जिसको सम्यक दर्शन होता है उसको रोमांच हो आता है तो बाहर उछलता भी होगा, तो ये कोई संसार के उत्साह की बात नहीं, ये तो अंतरंग चैतन्य तत्व की बात है। हेमंत भाई ने जो चर्चा संग्रह की बात की ब्रह्मचारी रायमल जी के, उसके अंत में मुनि का स्वरूप है और उस मुनिराज के स्वरूप में ये बात आई है कि मुनिराज तो वन जंगल एकांत निवास स्थान में रहते हैं, वन जंगल जैसे एकांत स्थान में रहते हैं। क्यों रहते हैं कि जो निधि अनादिकाल से प्राप्त नहीं हुई थी, बात समझ में आती, जो निधि जीव को अनादिकाल से प्राप्त नहीं हुई वो चैतन्य निधि अब प्राप्त हो गई है और उस चैतन्य निधि के भोग में बाधा न आए। संसार में बाधक ज्यादा हैं, वो तो निमित्त की अपेक्षा से करते हैं, उसमें बाधा न आए इसलिए वन जंगल एकांत में रहते हैं उस चैतन्य की निधि चैतन्य के भोग के लिए। बात समझ में आ गई, और एक शब्द भी कम हो जाए तो वैयाकरण तो उत्साह मनाते, उत्सव मनाते थे। अब यहाँ शब्द लिखा प्रथमतः, पहले में पहली बार, प्रथम कहते हैं तो मतलब सबसे पहले, और प्रथमतः कहा तो पहले में पहले, नहीं है बात समझ, पकड़ने तो आ गई होगी, है? प्रथम और प्रथमतः, प्रथम में तो ये था कि पहले, है? और प्रथमतः पहले में पहले, मतलब बाकी सबको गौण करके कि साहब हमारा नंबर इसमें है क्या नहीं, पहले देखो तो सही, प्रथम में कौन से जीव आते हैं, प्रथम में कौन से जीव आते हैं, प्रथमतः शब्द लिखा ना, इस प्रथमतः में कौन कौन से जीव आते हैं, प्रथमतः में कौन सी क्रिया, कौन सा ज्ञान, इन दो तीन बिंदुओं की अपन चर्चा करेंगे। तो प्रथमतः मतलब कौन से जीव, सबसे पहले आत्मचिंता करनी चाहिए कि मैं उसमें आता हूं या नहीं आता हूं। जो प्यासा सूखे कुओं में पानी ढूंढता है वो प्यासा ही मरता है, जो प्यासा कुएं पानी वाले कुएं के पास जाता है लेकिन पानी की वो निकालता नहीं है वो भी प्यासा मरता है। नहीं है बात समझ, एक तो वो प्यासा है जो सूखे कुओं के पास जा रहा है वो तो प्यासा मरना ही है, लेकिन वो प्यासा भी मरेगा जो पानी वाले कुएं के पास तो है लेकिन उसने उसमें से पानी बाहर नहीं निकाला। प्राप्त की ही प्राप्ति होती है, लेकिन जिसने वहां तक तो पहुंच गया लेकिन प्राप्त की प्राप्ति नहीं की है, बात समझ में आ गई। और जो प्राप्त की प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करता वो प्रथम में नहीं आता, नहीं बात समझ। वास्तव में ये कोई उपदेश की बातें तो है नहीं, जहां विधि आती है वहां उपदेश की बात नहीं है। फिर भी प्रथमतः में कि कौन सा जीव जिसको विषय भोगों से थकान हो गई है, विकल्पों में थकान होती है सोगानी जी की तरह, या तो ये देह रह जाए या विकल्प ऐसी दशा हो जाए, ऐसी तैयारी हो तो आराम से बैठना भैया, और ऐसी तैयारी वाला आराम से नहीं बैठता, दोनों ही बातें। इतनी तैयारी लेके बैठे तो सम्यक दर्शन लेके ही उठे, दूसरों को कहाँ दोष देना, अपने दोष देखो भीतर कितना प्रमाद पड़ा है, रुचि कितनी बाहर दौड़ती है, शब्दों में उलझने वाली बुद्धि भी पक्ष में ही उलझी पड़ी है, ये समझने और समझाने का जो विचार है ये भी सब उलझने के रास्ते हैं। विकल्प कई बार आते हैं कि कब तक समझाना और किसको समझाना, ज्ञानवान को क्या समझाना और अज्ञानी को क्यों समझाना। सब ज्ञानी है, वास्तव में पक्षातिक्रांत का मतलब क्या, साधना का मतलब क्या, कि ज्ञान को ज्ञान में मिलाकर ज्ञान में अनुभव करना, यही पक्षातिक्रांत बना है या साधना है। ज्ञान को ज्ञान में मिलाकर स्वयं को ज्ञान रूप घन ज्ञान घन रूप अनुभव करना, यही पक्षातिक्रांतपना है या साधना है। प्रथमतः पहले क्या करना, पहले में पहले क्या करना, करना करना ये तो मरने के बराबर है, पहले क्या करना कि कुछ नहीं करना इसका निर्णय करना। पहले में पहले क्या करना आएगा आगे, श्रुत ज्ञान अवष्टम्भेन, ये शब्द आएगा। श्रुत ज्ञान का अर्थ करना आगम, अवष्टम्भेन का अर्थ है अवलंबन, कि श्रुत ज्ञान के अवलंबन से, किस लिए अवलंबन लेना, किस लिए, देखो क्षयोपशम बढ़ाने के लिए नहीं, प्रवचन करने के लिए नहीं, ज्ञान का उपयोग प्रवचन करने के लिए करना, इसका मतलब तुझे अभी तत्व समझ में ही नहीं आया। ज्ञान बढ़ाने के लिए कि नहीं, विद्वत्ता के लिए नहीं, विद्वत्ता का अभिमान उसको मिटाने के लिए, विशुद्धि प्रकट करने के लिए। और आगे अमृत चंद्राचार्य क्या कहते हैं कि ज्ञान स्वभावम आत्मानम, आत्मानम मतलब मेरा स्वभाव तो ज्ञान है, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, ज्ञान का घन पिंड हूँ, ये सिद्ध करने के लिए, इसका निर्णय करने के लिए आगम का अवलंबन लेना। क्या लिखा है कि प्रथमतः सबसे पहले क्या करे कि सबसे पहले श्रुत ज्ञान अवस्टम्भेन, श्रुत ज्ञान के अवलंबन से, कि किस लिए कि श्रुत ज्ञान का अवलंबन किस लिए कि ज्ञान स्वभावम आत्मानम निश्चित्य, कि मैं करने के स्वभाव वाला नहीं। क्या शब्द लिखा, ज्ञान स्वभावम आत्मानम मतलब मेरी आत्मा अर्थात मैं, ज्ञान स्वभावम मैं करने के स्वभाव वाला नहीं, मैं किसी का निमित्त नहीं, कोई मेरा निमित्त नहीं, कोई मुझे उत्पन्न करने वाला नहीं और कोई मेरा कर्ता नहीं है, मैं किसी का कर्ता नहीं हूँ, मैं कर्ता ही नहीं मात्र ज्ञाता हूँ। मैं कैसा हूँ, ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। बात समझ में आ गई, आगे तो इसका भी निषेध करेंगे लेकिन प्रथम भूमिका में जीव को पहले ये तो निर्णय हो। प्रथमतः तीन काम इसमें बताएंगे, कौन कौन से टीका में, एक तो आगम के अवलंबन से अपने ज्ञान स्वभाव का, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ ऐसा निर्णय करना। बात समझ में आ गई, दो तीन बातें, जब तक निश्चय न हो तब तक श्रुत का अभ्यास करना, एक बात, जब तक निश्चय नहीं हो तब तक श्रुत का अभ्यास करना। ये नहीं कहा कि विषय भोगों को भोगना, क्या कहा, जब तक निश्चय नहीं हो तब तक श्रुत का अभ्यास करना। फिर क्या करना, निश्चय हो जाने के बाद उसमें एकाग्रता का अभ्यास करना। बात समझ में आ गई, निश्चय नहीं हो तब तक श्रुत का अभ्यास करना, श्रुत का अभ्यास होने के बाद निश्चय हो जाएगा, निश्चय हो गया तो क्या करना, एकाग्रता का अभ्यास करना, एकाग्रता का अभ्यास हो गया तो फिर क्या करना, उसमें स्थिरता का अभ्यास करना, स्थिर हो गया तो कुछ भी नहीं करना है, सादी अनंत काल के लिए ऊपर रहना। बात समझ में आ गई, निश्चय होने तक श्रुत का अभ्यास करना, और श्रुत का अभ्यास कब तक करना, निश्चय होने तक, निश्चय हो गया तो क्या करना, मान लो इतने वर्षों से सुन रहे हैं ज्ञान स्वभावी चैतन्य आत्मा है, मैं ध्रुव चैतन्य वस्तु हूँ, ये निर्णय नहीं हुआ है तो श्रुत का अभ्यास करो, निर्णय हो गया हो तो क्या करो कि उसमें एकाग्र होने का अभ्यास करो, और एकाग्र हो गए हो तो फिर क्या करे कि स्थिरता का अभ्यास करो, स्थिरता का अभ्यास करने के बाद क्या करना कि बाद में तुम्हें कुछ नहीं करना है, लोकाग्र में विराजमान होने का जो ऊर्ध्वगमन स्वभाव है वो करेगा, सादी अनंत काल के लिए सिद्धालय में विराजमान हो जाओगे, कि वहां एकाग्र होने के बाद स्थिरता हो जाए तो फिर और कुछ नहीं करना है। कि श्रुत ज्ञान अवस्टम्भेन, श्रुत ज्ञान का अवलंबन लेकर, किस लिए लेना है साहब, कि मैं ज्ञान स्वभावी हूं इतना सा पक्का करने के लिए, द्रव्य में ध्रुव चैतन्य वस्तु तो ज्ञान रूप है ही, अंतरंग में जाके देखो तो वहां न राग है न पर्याय है न शरीर है न मन है न वाणी है, वो तो ज्ञान पिंड है, ध्रुव है, शाश्वत है, पर्याय में प्रतीति नहीं है, कितना छोटा सा काम है कहो तो। नहीं है बात सुन, निज चैतन्य देव की प्रतीति करना मात्र इतना सा धर्म है, कहने में कितना सरल है। स्वामी जी ने भी कहा कि तीन लीटियां हैं, माल बहुत भरा है, तीन ही वाक्य है ना इसमें। सारी विधि इसमें बताई गई, क्या करना पहले कि श्रुत ज्ञान अवष्टम्बेन, श्रुत ज्ञान का अवलंबन ले, लेकिन किस लिए ले, विद्वत्ता प्रदर्शित करने के लिए नहीं। लोक कितना बड़ा है, 345 गणराजु, द्वादशांग में कितने पद है, 112 करोड़, ये छोड़ो, क्योंकि जैसे आप सुमेरो, उसका निषेध नहीं भाई, देखो वो भी जिनवाणी का अंग है, लेकिन प्रथम में प्रथम वाली बात है, नहीं बात समझ में, कि स्वरूप में उपयोग न रमे तो बाकी पढ़े तो कोई हर्जा नहीं है, लेकिन स्वरूप का निर्णय हुआ नहीं और बाकी तीन लोग का निर्णय कर रहा है, उसे क्या होगा, वो भी जिनवाणी का अंग है, अभिनय नहीं है। लेकिन मूल को छोड़ करके, अपना घर का काम छोड़ करके, अपना तो घर गंदा पड़ा है, दूसरे के घर में झाड़ू लगा रहा है, प्रथम में प्रथम स्वरूप का निर्णय होना चाहिए है? कदाचित ये भी हो जाता है, करनान योग मैंने भी, किशन जैन जी से बहुत पढ़ा है, बात समझ में आ गई, कदाचित यदि यथार्थ मार्ग न रहे तो भटकने के अवसर बहुत होते हैं, सावधानी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या कहा कि ज्ञान स्वभावम आत्मानम निश्चित, कि मैं ज्ञान स्वभावी हूं ये निर्णय करने के लिए आगम का अवलंबन लेना है। अब आप आत्म स्वभाव का निर्णय करना है और आप करनानियों का ग्रंथ सामने लेकर बैठे हुए हो तो तीन लोग का निर्णय तो हो जाएगा। समय सार जैसा अनुपम ग्रंथ नहीं, अशरीरी होने का ग्रंथ है, आत्मख्याति जैसी भरत क्षेत्र में दूसरी कोई टीका नहीं है, समझ में आ गई बात। और कर्ता कर्म जैसा अधिकार नहीं, और समझाने वाला जैसा कोई गुरु नहीं है, बात समझ में आ गई, कितनी आनंद की बात है, अलौकिक बात है। सुबह आया था कि अपूर्व है, कभी कान में नहीं पड़ी बात तो अपूर्व है, लेकिन उसके बाद का वाक्य ध्यान से सुनना चाहिए था कि उसका जो भाव है, बात तो सुनी, अनंत बार सुनी, लेकिन बात का जो भाव है वो नहीं रुचा। बात तो रुचती, जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है, बात तो रुचती है, लेकिन उसका जो भाव आना चाहिए वो भाव नहीं रुचता, भिन्न पढ़ने में जोर पड़ता है। और यहाँ क्या कहते हैं कि श्रुत ज्ञान अवष्टम्भेन, श्रुत ज्ञान का अवलंबन लेकर के किस लिए लेना है कि ज्ञान स्वभावम आत्मानम निश्चित, इसमें सभी निर्णय आ गए, व्यवहार सम्यक दर्शन इसमें शामिल है। क्या शामिल है कि कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के निमित्त से तो तीन काल में सम्यक दर्शन नहीं होता, आ गया कि नहीं इसमें, उनके निमित्त से मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं ऐसा निर्णय नहीं होता है। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र निकल गए, सात तत्वों में फेरफार रहे तो उससे भी सम्यक दर्शन नहीं होता, और चैतन्य क्या है, भगवान आत्मा जैसा है वैसा ज्ञान में न आए तो स्वपर भेद विज्ञान भी सच्चा नहीं है। ये तीनों सम्यक दर्शन की परिभाषा इसमें आ जाती है। फिर क्या करना है, निश्चित निर्णय हो गया, क्या निर्णय करना है कि चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा ज्ञान स्वभावी चैतन्य तत्व मैं हूँ, ऐसे श्रुत ज्ञान के अवलंबन के द्वारा निर्णय करना है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये बताई मति ज्ञान संबंधी, कि मति ज्ञान संबंधी जो इंद्रिय और मन है उसको आत्मसन्मुख करना, ये दूसरा काम। और तीसरा काम श्रुत ज्ञान में जो विकल्प उत्पन्न होते हैं, अक्षर के अनंतवें भाग के ज्ञान से लेकर के 11 अंग 12 अंग तक के जो ज्ञान है, उस ज्ञान संबंधी जो विकल्प श्रुत ज्ञान में होते हैं, उन विकल्पों को शांत करना। कितने काम बताए? 3 काम। विस्तार से पढ़ेंगे कल या अभी बाद में है उसमें भी। पहला काम कौन सा? कि पहले श्रुत ज्ञान का अवलंबन लेना, मति ज्ञान को आत्मसम्मुख करना, और तीसरा काम है श्रुत ज्ञान में जो विकल्प है उन विकल्पों को शांत करना। दिखने में ये 3 काम छोटे से लगते हैं, 3 काम है ना ये, छोटे छोटे हैं। कितने छोटे हैं साहब, कितने छोटे से लगते हैं? कि पहला काम ये बताया कि श्रुत ज्ञान का अवस्टम्बन अर्थात अवलंबन ज्ञान स्वभाव के निर्णय के लिए, और ज्ञान स्वभाव के निर्णय के लिए भी तभी तक कि मैं शुद्ध हूं ऐसा विकल्प, मैं ज्ञायक हूं ऐसा विकल्प, ये भले ही अंतिम सीढ़ी हो लेकिन इसको भी पार किए बिना मंजिल प्राप्त नहीं। बात समझ में आ गई? जिसको ये बोलना नहीं आता, जो अंतिम सीढ़ी तक नहीं पहुंचा, अंतिम सीढ़ी पर ठहरा हुआ जीव भी पक्ष में ही है, पक्षातिक्रांत नहीं हुआ है, पक्ष में ही है, पक्षातिक्रांत नहीं हुआ है। पक्षातिक्रांत कौन? कि जिसके एक भी सीढ़ी बाकी नहीं रही, जो घर में प्रविष्ट हो गया है वो पक्षातिक्रांत। उसके लिए क्या करना? कि यतः ये बताया कि वो जीव पक्षातिक्रांत कैसे हुआ, पहले तो स्थापना कर दी 2 वाक्यों में। पहले स्थापना क्या कर दी? कि जिसका नाम ये है, पहले वाक्य में, और जो ऐसा है। अब तीसरे वाक्य में आया कि वो ऐसा कैसे हुआ, ये तीसरे वाक्य। सीक्वेंस समझ में आ गई? उसका नाम ये है, पहली पंक्ति सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान जिसके नाम है। अब वो कैसा है? कि जिसको देखने पर सभी प्रकार के नयों के जितने भी विकल्प थे। कुंद कुंद स्वामी ने सर्व नय पक्षों से रहित बताया है, क्या गाथा नीचे कर लेना, सर्व नय पक्ष रहित हो। क्या लिखा है? सर्व नय पक्षों से रहित। एक तो ये कुंद कुंद स्वामी की भाषा। आचार्य अमृत चंद्र स्वामी कहते हैं कि सभी प्रकार के विकल्पों से रहित। अंतर क्या हुआ? भाषा का अंतर है, भाव का अंतर। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं नय पक्ष रहित, अमृत चंद्र स्वामी कहते हैं सभी प्रकार के नयों के विकल्प से रहित। नहीं आई बात समझ में? एक उन्होंने तो नय पक्ष कहा और इन्होंने कहा नयों के विकल्प से रहित। स्वामी जी ने कहा कि जब तक पक्ष रहता है तब तक रागांश रहता है, और जब तक रागांश रहता है तब तक सम्यक प्रतीति नहीं होती है, इसलिए रागांश रहित पक्षातिक्रांत होता है। क्या कहा? मैं शुद्ध हूं यहां तक भी राग का अंश विद्यमान है, रागातीत नहीं है, इसलिए राग अंश सहित जो विचार है वो विकल्प है। निर्विकल्प दशा में, निर्विकल्प दशा ही होती है, अब विकल्पों में राग था, अब विकल्प ही नहीं रहा तो राग नहीं रहेगा, इसलिए रागांश वो विकल्प, ऐसे स्वामी जी ने अर्थ किया। और पक्षातिक्रांत के जो भाषा की दृष्टि से अर्थ है, पक्षात अतिक्रांत, जो पक्ष से पार है, और तीसरा कि जिसको पक्ष नहीं छूते वो पक्षातिक्रांत। ऐसे पक्षातिक्रांत के 5 अर्थ है। कौन कौन से? नय पक्ष रहित, नयों के विकल्प से रहित, राग अंश से रहित, और पक्ष से अतिक्रांत, और 5वां पक्ष जिसको नहीं छूते हैं ऐसे। एक भाषा की दृष्टि से, एक कुंदकुंद आचार्य की भाषा में, एक अमृत चंद्राचार्य जी की भाषा में, स्वामी जी ने जो मर्म निकाला उसमें से वो, फिर एक प्रेरणा वाला पांचवा कि जिसको पक्ष छूते ही नहीं है, ऐसे पांच अर्थ है। बाकी चर्चा अपन कल कर लेंगे या शाम को।